I-34 से अब क्वेश्चन नंबर 6 शुरू हो रहा है. पीछे कितने लिखाए थे? 5. अब लिखिए I-34 के क्वेश्चंस, उसी को कंटिन्यू करेंगे. कुल कह दीजिए, यानी कंटिन्यू करो बात. इससे पता चलता है कि कुछ सवाल एक नशिस्त में उठा देने चाहिए. थोड़ा स्टूडेंट उस पर सोचें या बच्चे सोचें, जिनके साथ भी आप डील करें या आप दर्स देने गई हैं, तो आप शुरू में जाके इतने हमले ना कर दें कि अगला बिल्कुल ही मॉरली डाउन हो जाए. थोड़ी सी बात करें, फिर उसका तस्किया करें, फिर करें, फिर थोड़ी बात. अब 5 सवालों के जवाब में 3 बातें कह दी गई, ला यू मैनो नन्ना दूसरे फोन और इसी तरह से अफला तत्कुन. अब 6 क्वेश्चन, कुल कह दीजिए, हल मिन शुरकाइकुम, इनसे पूछिए क्या तुम्हारे शरीकों में कोई है. कौन सा? मैं अब्दुल खलका सुम्मा युईदुहु, जो तख्लीक भी करता हो पहली बार और फिर इसे दोबारा भी बना दे. बात समझे? कोई है तुम्हारे माबूदों में जिनसे तुम डरते हो, जिनकी बातें मानते हो, करते हो? पूछो क्या वो ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम बनाए. फर्स्ट टाइम के नीचे लिख लीजिए कि ओरिजिनल कॉपी, ओरिजिनली क्रिएट कर सकें. सुम्मा युईदुहु, चलो ठीक है, ये बताओ क्या वो उसकी कॉपी भी कर सकता है? अल्लाह ने एक प्यारा बच्चा दे दिया, किसी से कहो कि इस बच्चे की एक कॉपी बना दो, नकल बना दो, कर सकते हैं? अब इसके जवाब में देखिए, कुछ नहीं आया. वहाँ तो क्या आ गया था? फस यकूलू ना अल्लाह, यहाँ कुछ नहीं है. मतलब यह कि यह सवाल ऐसा है कि वो लाजवाब हो गए, कोई जवाब ना आया इस छठे सवाल का. तो अल्लाह कहते हैं तुम खुद इनको कह दो. जब स्टूडेंट्स को जवाब नहीं आता तो फिर उस्ताद खुद ही बता देते हैं, कहा आप बताओ, कुलिल्लाहु यब्दउल खल्क सुम्मा युईदुहु, आप कहिए अल्लाह ही है सिर्फ वो जो पहली बार भी पैदा करता है और वो ही इसको दोबारा भी बनाएगा. ठीक है, तुम जवाब नहीं दे पाए तो फाना तुम फकून, फिर तुम कहाँ से पलटाए जा रहे हो. देखिए तू फकून दोबारा आ गया ना, दूसरा फोन था, यहाँ तू फकून है. और आप देखेंगे तो सारे लफ्जों में रिधम है. एक लफ्ज होता है खुद भटकना या खुद पलटना, लेकिन तू फक जो है ना, ये मजहूल है, पैसिव वॉइस है. तुम्हें खुद नहीं पता तुम्हारी खोपड़ियों को कौन घुमा देता है, तुम कहाँ से पलटाए जाते हो, तुम उल्टी राह पे चल पड़े हो, तुम ओंधे मुँह चल पड़े हो, तुम्हें ये पता ही नहीं है कि मालिक का इख्तियार तुम पे कितना है. तो क्या पता चला यहाँ तौहीद का एक खूबसूरत नुक्ता, कि जो खालिक होता है वही मालिक भी होता है और कॉपी राइट्स भी उसके पास होते हैं. अल्लाह ने जब ये दुनिया बनाई अपनी मर्जी से बनाई, अब दोबारा जब बनाएगा सुम्मा युईदुहु, मरने के बाद कब्रों से उठाएगा, तब भी अपनी मर्जी से बनाएगा. पीछे सवाल हुआ था ना कि वहां की आंखें कैसे हमें देखेगी, एक रेनोवेशन होगी. जैसे उस रूह को आज दुनिया में एक वक्ती से लिबास पहनाया हुआ है ना अल्लाह ताला ने मॉडलिंग के लिए. कभी आप देखते हैं अच्छे कपड़े होते हैं, उनको सजाने के लिए लोग कुछ मॉडल्स बना के उनको पहना देते हैं. आप गए किसी बहुत खूबसूरत बुटीक में, आप ड्रेस लेने गए, देखा तो उन्होंने कुछ पुतलियों को बनाए हुए हैं, आप कहते हैं अच्छा ठीक है ले ले. लेकिन असल जोड़ा वो कब पहन होता है? जब आप पहनते हैं. इस दुनिया में अल्लाह ने हमारे इस जिस्म को एक पुतली की तरह बना दिया. हम जो पहनते हैं हमें अच्छा लग ही जाता है एक खास हद तक, जैसे मॉडलिंग करने वाले किसी स्टैचू पे पहना हुआ है. लेकिन जो मज़ा बंदे को खुद पहन के अपने हिसाब से आता है वो जन्नत में आएगा. क्या बता दिया कि अल्लाह ने इस दुनिया में भी तुम्हें नेमतें दी तो वहाँ भी दी. दुनिया की हर चीज उसके हुक्म पे चल रही है, तुम पलटो नहीं. ये जो लफ्ज़ है ना तू फकून, इफ्क से हमजा फा काफ तूफान को कहते हैं. आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह सूरत नूर में वाकया इफ्क. हजरत आयशा पर जो इल्ज़ाम लगा था वो है, इंग्लिश में आप इसको स्लेंडर कहेंगे, बोहतान, किसी चीज़ का उसके असल रुख से मुँह फेरना. इसी से है कि किसी को उसकी राय से फेर देना, मकसद से हटा देना. झूठ को इफ क्यों कहते हैं? क्योंकि घुमा फिरा कर बात को पलट दिया जाता है. यहाँ इससे क्या मुराद है, किधर फिरना है? कि तुम्हारी तवज्जो अल्लाह की तरफ होनी चाहिए थी. ये कौन है जो तुम्हें नफ्स की तरफ और शैतान की तरफ ला रहा है? इसी तरह तुम्हारी तवज्जो आखरत की तरफ होनी चाहिए थी, तुम दुनिया की तरफ आ गए हो. मकसद यह है कि तुम पर्पज़ ऑफ लाइफ को भूल गए, ज़िंदगी का मकसद तुम्हारे लिए बड़ा नहीं रहा, तो लिहाजा फिक्र करो. चलिए 6 सवाल हो गए. आप कौन सा सवाल का नंबर है? 7. I-35. ये है आज के, यानी आज के सबक की थीम आयत है. बड़े गौर से सुनिएगा इसको, क्योंकि इसमें थोड़ी सी तकरार है लफ्ज़ों की जो तर्जमे में आपको मुगलता दे सकती है। कुल, कह दीजिए, अगला सवाल। और आप देखिए इस कुल में भी कितना प्यार है, अल्लाह नबी से कह रहे आप इनको पूछें। अल्लाह के नबी ने कुरान अगर खुद लिखा होता तो ये कुल ऐसे ना होता, बल्कि होता अकुलू, मैं कहता हूँ तुम्हें, ठीक है, क्या कह दो। हल मिन शुरकाइकुम, कोई है तुम्हारे शरीकों में से, कौन सा, मैं यहदी इलल हक्की, जो हक की तरफ रहनुमाई करे, कोई तुम्हारे साथियों में, दोस्तों में, प्यारों में, जिसको भी तुम पूजते हो, चाहे वो बुत है या कोई बुजुर्ग है या आज का तुम्हारा मुआशरा, कोई एक भी ऐसा है जो तुम्हें हक की तरफ गाइड करता है, जिसको तड़प लगी हुई है कि तुम हक पे आ जाओ, जिसको ये फिक्र लगी हुई है कि तुम बातिल पे ना रहो बल्कि हिदायत पे आ जाओ, है कोई? अब इसका भी कोई जवाब नहीं। गोया के मुआशरे का मुआशरा ही बिगड़ा हुआ था, और मासिस जो होती हैं ना, जब वो बिगड़ती हैं ना, तो फिर अल्लाह सुब्हान तआला नबियों को भेजता है। मक्का वाले उसी तरह बिगाड़ का शिकार थे जैसे आज के दौर के हैं। और मैं बड़े डरते हुए अल्लाह ताला से एक जुमला बोलने लगी हूँ कि अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी ना होते तो आज का दौर 2014 तो अब आया ना, आज से भी ये पिछली सदी में लगातार रसूल आ रहे होते, इतना बिगाड़ इस वक्त दुनिया में। कल आप लोगों ने सुना ही होगा जो 5 महाज बताए स्टूडेंट्स को, कि अब कुरान तो आपने पढ़ लिया है, अब इस कुरान को लेके जाना किधर है, तो पूरी की पूरी सोसाइटी जिसको आप कह सकते हैं कि अपसाइड डाउन हुई। वो कहते हैं ना, था ना खूब वही खूब हुआ, कि गुलामी में बदल जाता है कौमों का ज़मीर। एक तो मसला ये ना कि बंदे को पता है कि मैं गलत काम कर रहा हूँ, ठीक है ना, मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मुझे पता है झूठ बोल रहा हूँ, बुरी बात है, ये तो बात क्यूरेबल होती है। लेकिन कोई झूठ बोले और उसका नाम सच लिख दे, उसको क्या कहेंगे? फमाज़ाबादल हक्की लदलाल। क्या आज आपको ऐसा नहीं लगता? ये जो हम लोगों के बीच में तजुर्बात करके आते हैं, एक दो दिन पहले भी हम गए, जिक्र किया था आपसे, वल्ला ही मुझे ऐसे लग रहा था कि जो होना चाहिए वो कोई नहीं, और जो नहीं होना चाहिए वो सब है। और वो गरीब मस्कीन ही कहती हूँ मैं तो, क्योंकि दौलत की गुर्बत नहीं होती, इल्म की भी गुर्बत होती है, फहम की भी गुर्बत है, मुझे ऐसे लोग मिस्कीन लगते हैं, वल्ला ही ऐसे लगता है कि मैं कुछ इनको दे दूँ, ये मेरी मदद के मुस्तहिक हैं, कि ये गरीब है, इनको नहीं पता कोई मर जाए तो क्या करना, जो चाहिए वो है नहीं और जो नहीं है वो है, तो जो ना था खूब वही खूब हुआ। कि जब बंदा गुलामी पे जाता है ना, तो जो चीज़ें बुरी होती हैं वो उसको अच्छी लगने लग जाती हैं। शराब कोई अच्छी चीज़ है? लोगों को अच्छी लगती। कोई गाने या म्यूज़िक इतना ऊंची जो सर को फाड़ दे, अच्छी चीज़ है, लेकिन लोगों को उसमें मज़ा आता है। और अजान की सुरीली आवाज़ और कुरान की तिलावत की आवाज़ उनको अच्छी नहीं लगती, तो अल्लाह सुबहान तआला कहते हैं कि इनसे कह दो कोई है जो तुम्हें हक की तरफ बुलाए। यहाँ अपने दिल से पूछिए, क्या अल्लाह सुबहान तआला ने मेरे लिए भी हिदायत का कोई रास्ता खोला हुआ है? क्या अल्लाह तआला ने मुझे भी हक की तरफ बुलाना है? अब देखिए इसका भी जवाब नहीं मिला उनसे, ख़त्म, क्योंकि कुल के बाद फिर अगला कुल आ रहा है, जवाब भी नबी से दिलवाया गया। قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ, आप कह दो कि अल्लाह ही है जो हक की तरफ रहनुमाई करता है, उसका नाम अल हादी है। अल्लाह सुब्हान तआला के 99 नेम्स को अगर आप पढ़ें तो उसका नाम अल हादी। अल हादी क्या है? असल में आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा के साथ किया हुआ वादा, فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ। याद आ गई आयत 40 गालिबन, कि जब तुम्हारे पास मेरी तरफ से हिदायत आएगी, अब जाओ दुनिया में, जन्नत का फल चक्का, अब तुम जाओ, माफ़ तो कर दिया, लेकिन अब गो इन द दुनिया, और अब तुम्हारे पास हिदायत, किताबें, नबी, सहीफे आएंगे, फिर हिदायत की पैरवी करोगे तो ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। तो अल्लाह ने उस दिन वादा किया था Day 1 पे कि मैं आदम तुझे और तेरे बच्चों को भटकने के लिए नहीं छोड़ूंगा, इसलिए कहा अल्लाह यहदी लिल हक। तो आप लिख सकते हैं हक की तरफ बुलाने वाला सबसे पहला अल्लाह है। पीछे पढ़ चुके हैं आप, वल्लाहु यदुकुम इला दारिस सलाम, इला दारिस सलाम, अल्लाह तुम्हें जन्नतों की तरफ बुलाता है। अल्लाह ने इंसान की कैसे पुकारता है? अब सवाल पैदा होता है कि अल्लाह कैसे बंदे को हक की तरफ बुलाता है? तो नंबर 1, वादे अलस्त, फितरत में रखा हुआ है لستو بربکم. یہ ہے پہلی اللہ کی طرف سے رہنمائی انسانیت کی. نمبر ون لکھ لیجئے, پانچ چھ چیزیں بولوں گی. اللہ بندے کو حق کی طرف کیسے بلاتا ہے, یہ سوال ہے. نمبر ایک, فطرت میں وعدہ الست رکھ دیا. نمبر دو, عقل شعور دیا, حق باطل کا فرق سمجھایا, کہ ہم بیوقوف تھوڑی ہیں, ہمیں صاف پتہ ہوتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے یہ سچ ہے, تو عقل جس کو وزڈم کہیں گے. تیسری چیز, کائنات, آثار کائنات, سائنس, ان فی خلق السماوات والارض. کائنات میں اللہ نے چھپکے چھپکے اپنی چھوٹی چھوٹی نشانیاں رکھ دیں. جیسے اس قرآن کی آپ آیتیں پڑھتے ہیں, آپ کہتے ہیں یہ سورت یونس کی آیت 35 ہے, تو اللہ نے قرآن میں اگر 6,666 آیتیں رکھی ہیں نا, تو اس کائنات میں اللہ نے 6 ملین سے زیادہ آیتیں چھپائی ہوئی ہیں, کہیں گھاس کی بوٹیوں کی صورت میں, تو کہیں بادلوں کی ٹکڑیوں کی صورت میں. یہ ساری بھی بول بول کے یہدی للحق, چلو رب کی طرف, حق کی طرف. تم کہتے ہو لوگوں نے بڑی سائنسی ترقی کر لی, آرٹیفیشل بارش بنا لیتے ہیں, ٹھیک ہے, ہوتی بھی بارش کو روک کے دکھاؤ, آتی بھی سونامی کو روکو, زلزلہ آ گیا روک. آپ نے زلزلہ پروف عمارت تو بنا لی, لیکن آپ زلزلہ روکیے, نہیں کر سکتے نا. تو کائنات بول بول کے حق کی طرف گائیڈ لائن دے رہی ہے. چوتھی چیز ہے, یہدی للحق میں ریولیشن, وہی, فی صحف ابراہیم و موسیٰ, اور آج ذالک الکتاب لا ریب فی ہدی للمتقین. آ گئی نا ہدایت, کتابیں, نبی, صحیفے, اپنے دور کا پیغمبر, یہ سب حق کی طرف بلاتے ہیں. اور آج اگر آپ امت مسلموں کو دیکھیں تو قرآن اور حدیث, نبی کے فرامین, نبی کی زندگی, نبی کی زندگی کے معجزے, یہ سب یہدی للحق ہے. اس میں آپ سیرت کا لفظ بھی لکھیے, اللہ کے نبی کی سیرت جنہوں نے آپ سمجھ لی ہے, جہاں تک ہم نے پڑھی ہے, تو اب یہ آپ مان گئے ہیں کہ حق کا ہی بول بالا. قل جاء الحق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا, سورۃ بنی اسرائیل میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ جلدی, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے بتاتے ہیں کہ دیکھو آج اس دنیا میں حق کا ساتھ دیتے ہو نہیں دیتے, تمہاری مرضی, اوپن چوائس. اور بہت سارے لوگ پھر نہیں دیتے, کیوں؟ کیونکہ عموماً حق کے ساتھ پمپ اینڈ شو نہیں ہوتی, گلیمر نہیں ہوتا, قربانیاں, ہجرتیں, وقت, تکلیفیں, سمجھ ہی نہیں آتی. ہر چیز کی ضرورت ہے, یہ بھی مانگو, یہ بھی کرو, یہ بھی چاہیے, وقت بھی چاہیے, مال بھی چاہیے, بچے بھی لگا دو. حق کی طرف آتے ہوئے لوگوں کو نہیں پتہ چل رہا ہوتا, لیکن جب ایک بندے کو سمجھ آ جاتی ہے نا کہ آخری بول والا حق ہے, تو پھر وہ سر کے بل آئے, لیٹ کے آئے, پتھروں پہ رینگتا ہوا آئے, وہ کہتا ہے میں نے یہ رستہ نہیں چھوڑنا. بات سمجھے اس بات کو؟ اگر آج حق پہ چلنے کے بعد ہمیں ملیں پرائزز, گفٹس, یقین کریں میں آج کل اپنے دل کو اتنا روکے ہوئے ہوں, میں سوچتی ہوں کہ جیسے ایک دنیا داری بھی ہے, اچھا بھی لگتا ہے کہ جب بھی کوئی کورسز ختم ہوتے ہیں, کسی کو گفٹ دو, کسی کو مبارک دو, کسی کو کارڈ بھیجو. میں نہیں دیتی, میں سب کے سامنے یا اکیلے میں دعائیں ہی دیتی ہوں, کہ کہتی ہوں اللہ کہیں ان کے دل میں ہلکی سی بھی آمیزش نہ آ جائے کہ اس تعریف کے لیے ہم نے یہ پریزنٹیشنز بنانے ہیں. بس میں ان کو یہ کہتی ہوں کہ اللہ تو ان کو اور توفیق دے, ٹھیک ہے نا. تو جب حق کے ساتھ بندے کا دل جڑتا ہے نا, تو مجھے کچھ دیتے ہو کہ نہیں دیتے, میں نے تو دینا. ایک ساتھی تھی, ہیں ابھی بھی الحمدللہ, اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت بھی کرے, تو وہ کہتی تھی کہ نام لیتی تھی کبھی اسکول کا, کہتی تھی کہ اب مجھے اس بات کا یقین ہو گیا کہ میں جس جگہ پڑھنے آئی ہوں یہ حق ہے, کہ اس میں کوئی وہ الٹم پلٹم نہیں ہے جو دین کے نام پہ. کہتی تھی اگر آپ یہ لوگ مجھے یہاں سے آپ نکالیں گے بھی نا, تو میں پھر بھی آ کے سیڑھیوں میں بیٹھ جاؤں گی. نام لیتی تھی نور القرآن کا, کہ آپ لوگ مجھے ڈانٹیں, مجھے نکالیں, میں غلط کام کروں, مجھے کچھ بھی کہیں, مجھے لے آف کریں, میں پھر بھی آ کے دروازے پہ بیٹھ جاؤں گی, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ یہ حق کا راستہ ہے, اور حق کو آخر میں پتہ ہوتی ہے. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو شروع کے دور میں لوگ جمع ہوئے تھے نا, 13 سال, آپ پتہ 100 کچھ لوگ تھے, 13 سال میں 100 کچھ لوگ کیوں آئے؟ یہدی للحق, وہ صرف حق کے لیے آئے تھے. اس وقت کوئی مراد نہیں تھی, جابز آفر نہیں ہوئی, उस वक्त कुर्बानियों के तोहफे थे, हिजरतों के तोहफे थे, पत्थरों के तोहफे थे, इल्जामात, सिला रहमी टूट गई, खानदान छोड़ दिए, बीवियां मर्दों को छोड़ के जा रही हैं, हर घर में अल्लाह के नबी के खिलाफ प्रोपेगंडा था। और आपको तो सबसे बड़ा प्रोपेगंडा मक्का वालों का क्या था, अल्लाह के नबी की मक्का में जंग तो कोई हुई नहीं, ये तो आपको भी पता ही है ना, चल गया पता कि नहीं, मैं पता नहीं क्यों ज़हनी तौर पर आपको बहुत आगे समझती हूँ। मक्का में कोई जंग नहीं हुई मक्का वालों से, तो सवाल पैदा होता है कि अल्लाह के नबी और आपकी दावत पे आने वाले लोगों को भी बुरे क्यों लगते थे, क्वेश्चन समझे भाई। मदीना में आए तो चलो मान लेते हैं कि जी जंग लगती है और काफले भेजते हैं और डिसेंड है, उसको पीछे कर दे। 13 साल मक्का में अल्लाह के नबी और आपके साथियों के साथ लोगों की जंग क्या थी? आप क्या उनको मारते थे? क्या आपने काबा में जाके कोई गंदगी फेंकी? नहीं की। क्या जंग थी जी आप बताइए? जी सोशल टाइज तोड़ रहा है ये बंदा, मुफसिद। कहते थे कि ये शख्स नबी सल्लम पे इल्ज़ाम लगाते थे, कहते थे ये ख़ानदानों में जुदाइयाँ डाल रहा है। आपको याद है ना सूरत अनफाल में अबू जाहल ने बदर के लिए जाते हुए क्या किया था, काबा का गिलाफ पकड़ के कहा था कि अल्लाह जो तेरी नज़र में रिश्तों को काटने वाला आज तो उसको काट दे। उस अल्लाह के बंदे को यकीन था कि नबी सल्लम कादिर रहम है, घरों का सुकून बर्बाद हो गया, ये माएँ बच्चों को टोकती रहती हैं, ये बीवियाँ शौहरों पे तनकीद करती हैं, ये जिसका मुंह आता है उठ के चल पड़ा, जवान बच्चा जी ये चला गया, मैं मौलवी बन गया, मैं दीन पे चला गया, मैं ये हो गया, ये किसी की बीवी उधर है तो किसी का शौहर उधर है, तो बच्चे इधर है तो बीवियाँ उधर हैं। अब ये कहने में तो हम बड़े मेलोडियस आवाज़ों में सुनते हैं ना हिजरत के काम, लेकिन आज इस 2014 इस लंदन शहर का सोचिए, एक औरत इस्लाम कबूल करे और ज़ाहिर है कि जब शौहर ना उसका साथ दे तो फिर उसको वो थोड़ी सी धमकी दे, या शौहर नमाज नहीं पढ़ता और बीवी कह दे कि ठीक है जी मैं आपकी खिदमत करने को तैयार हूँ लेकिन आपको नमाज़ें पढ़नी पड़ेंगी, फिर देखिए अपनी सासें कितनी ताने देंगी, ये बड़ी बन गई हैं मौलवियानियाँ, ये अब मेरे बेटे को ये ताने देती हैं। तो ये जंग थी उस दौर की, मक्का में सिर्फ और सिर्फ सोशल वॉर थी, उनके रंग में भंग डल गया था, वो खुशियाँ वो शादियाँ वो गम और वो पंडालों में बैठना और रातों को पूरी पूरी रात सामिरन आगे हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह महफिलें सजाते थे। अरबों का कल्चर क्या था जिसको आज की ज़ुबान में आप कहें कि फजर के वक्त होते थे, पूरी पूरी रात की उनकी महफिलें होती थी, उन्होंने चौपालें बनाई हुई थी, डेरे नहीं होते जैसे, और आज भी अगर आप देखें अरब कल्चर को अपने करीब से देखा हो तो वीकेंड पे क्या करते हैं, ये सहराओं में जाते हैं और वहाँ खेमे, मैंने खुद इस दफ़ा जब गई तो एक फैमिली के साथ हमें थोड़ा करीब से देखने का इत्तेफाक हुआ, कहती वीकेंड्स पे हम सब अपने घरों को छोड़ देते हैं, फॉर्म्स बनाए हुए हैं जैसे दूर खुली जगहों पर घर, और फिर पूरी रातों को बारबेक्यू और खाने और पीने स्विमिंग पूल है और सुबह के वक्त फजर पढ़ के आते हैं। अब ये तो इस्लाम है ना, तो दौरे जाहिलियत में किसको सोने और जागने की बात थी, तो लिहाजा उनको लगता था कि इस बंदे ने तो हमारी हर चीज कोई रंग में भंग डाल दिया। तो अल्लाह ताला के नबी की जात, अब देखिए उस दौर में जो बात कर रही थी कि अल्लाह के नबी के साथ देने वालों को कोई ग्लैमर दिख रहा था इस्लाम में? नहीं दिखा ना। लेकिन फिर क्या हुआ, सिर्फ 8 साल गुजरे, सिर्फ 8 साल गुजरे मक्का से मदीना गए हुए, फैजा जा नसरुल्लाह वल फतह वराई तन्ना सैद खलू न फी दीन अल्लाह, और सूरह फतह पढ़ लीजिए, इन फतहना लका फतहा मुबीना। लोग जो एक एक आते थे मक्का में मुसलमान होते थे, अल्लाह कहते हैं यद खलू न फी दीन अल्लाह अफवाजा, फौजों की फौजें बनी। हिजरत की मक्का से तो 100 कुछ लोग थे, चलिए कुछ थोड़े उधर रह गए, कुछ 8-10-15 बंदे मदीना में भी तैयार हो चुके थे। गजवे बदर हुई 1 साल बाद 313 तो साथ निकले, कुछ घरों में मौजूद थे। गजवा उहद पे चलिए 1000 निकले, 300 को अब्दुल्ला बिन उबई तोड़ के ले गया मकामे शौत पे, खुद निकला अपने साथ 1/3 को निकाल गया, 1000 थे ना कलमा पढ़ने वाले। आगे बाकी जंगे जो भी आपने नहीं पढ़ी उसको स्किप करती हूँ। गजवा हुनैन पढ़ा आपने, क्या सुनाया था आपको, 10,000 मुसलमानों के बाद 10,000 लोग जमा हो गए, तो सारे तो नहीं घर से निकले थे, 10,000 निकले तो कोई 2,000 पीछे भी थे, 12,000 हो गए। चलिए उसके बाद 8 हिजरी को मक्का फतह हुआ, कितने लोग थे नबी सल्लम के साथ जी, 10,000 लोग थे। जब आप 8 हिजरी को मक्का के तरफ हमले के लिए जा रहे हैं या वो जो भी इरादा था, 10,000 लोग हैं, और आपको तो उसके सिर्फ 1 साल बाद सन 9 हिजरी के बाद, यानी 10 हिजरी कह लें, ये बिल्कुल अल्लाह के नबी का आखिर था, आपने लोगों के साथ हज किया, कितने लोग थे आप हजरतुल विदा में, 1,00,000 से ज़्यादा लोग थे। ये फ़र्क समझा करें आप, जब हक के साथ कुर्बानियाँ है ही कुछ नहीं, बेचारे हथड़ مفلس کا لاش کون ساتھ دے گا؟ وہی دے گا جو یہدی للحق. لیکن جب لوگ پھر بہاریں دیکھی نا, بدر کی فتح ایک بہت بڑا لوگوں کے لیے معجزہ تھا, اور احد کے علاوہ ہر جنگ میں فتح, تو پھر یہ فتوحات کو دیکھ کے لوگ آنے لگ جاتے تھے. اسی لیے صحابہ کہتے تھے کہ جو لوگ شروع میں آئے دین میں ان کا درجہ کون پا سکتا ہے. ہم تو دین پہ جاتے تھے, اللہ کی طرف جاتے تھے, تو ہم تو مارے کھاتے تھے, تمہیں تو آج مراد ملنے لگ گئی. پیچھے سنایا تھا نا آپ کو مہاجرین اور انصار میں, اللہ نے بھی پھر اسے باندھی ہے. وہ سابقون الاولون ہو گئے, سلت من الاخرین, تھوڑے بعد والوں میں پہلوں میں بہت سارے ہیں. تو بات کا خلاصہ کیا ہے کہ نبی کی آج پوری سیرت ہمارے سامنے کھلی کتاب ہے. ہمیں یہ یقین ہے کہ حق کو پتا ہے, کل جال حق وزحق الباطل. تو اگر آپ سب حق کی تلاش میں ہیں تو آپ کو نبیوں کا مشن پیارا لگے گا. لیکن اس میں قربانی ہے, سانس پھولنے لگتے ہیں, اتنی ریزسٹنس بات سب ہوتی ہے کہ بندہ سٹ پٹا جاتا, کہتا میں سب چھوڑ رہا ہوں. کون اتنی باتیں سنیں. ایک بہت اچھی ساتھی تھی ہماری, دین دار خاندان تھا, بے دین نہیں تھی, اتنی نائس اسٹوڈنٹ کہ آج بھی میرے دل میں ان کی کسک ہے. 18ویں پارے پہ تھی شاید, اخیر ایک دم انہوں نے کہا کہ میں آگے نہیں کنٹینیو کروں. میں اس کے پاس خود گئی, میں نے کہا کیا ہے؟ کہتی استاذہ میں تھک گئی ہوں, مجھے اتنے تانے ملتے ہیں فقہی مسئلے طہارت میں, کیونکہ دین دار خاندان تھا نا, ہم کبھی فقہ میں اتنا جاتے ہی نہیں ہیں, لیکن ان باتوں پہ. تو میں نے کہا آپ نہ کریں ایسے غسل, ہم نے کون سا آپ کو یہ کتاب و طہارہ کے بعد کبھی ہم نے یہ مسئلے سنائے. کہتی بس میرے ساتھ برداشت نہیں ہوتی, اب میرے شوہر یہ اور وہ دس اینڈ دیٹ. میں نے کہا آپ اپنے دل کی سنائیں, مجھے ان کی پرواہ نہیں ہے, آپ کی ساس آپ کے سسرال جو کہتے ہیں آئی ڈونٹ مائنڈ, وہ بیچاروں نے تو میں نہیں سنا, آپ کیا کہتی ہیں؟ کہتی میرا دل مطمئن ہے. میں نے کہا پھر آپ گھر سے کر لیں. کیوں؟ اس کو پتا تھا کہ جو چیز میں پڑھ رہی ہوں وہ حق ہے, لیکن حقیقت میں نے دیکھا پڑھی لکھی لڑکیاں بھی بعض دفعہ ریزسٹنس برداشت نہیں کر پاتی. تو اس میں جو جم گیا, پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ خوشخبری ہیں, آگے پڑھیں گے انشاءاللہ. اگلے ویک میں ہمارے دو لیسن ایسے آ رہے ہیں کہ جس میں بڑی معروف آیتیں ہیں, آپ جب پڑھیں گے تو آپ کو اچھا لگے گا. تو پوری تصویر کو دیکھیں گے نا, تیہدی للحق میں نبی کی صورت میں اللہ نے دکھا دیا کہ آخری غلبہ حق کا ہوگا. اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اب چلنا چاہتے ہو تو پھر اسی طرح چلنا پڑے گا, اور اللہ حق کی طرف گائیڈ لائن دیتا ہے. اب آگے سے یہاں پہ وہ سوال پورے ہوئے, اب اس آخری سوال کہ کون ہے جو تمہیں ہدایت دے حق کی طرف, اب ذرا اس کی تھوڑی سی ڈسکرپشن ہے. آیت کو اگر اس کی جگہ پہ لے کے دیکھیے گا, افمئی یہ دل الحق کی, تو کیا جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے. سوچئے ذرا, اب میں نے آپ کو پیچھے اتنی گائیڈ لائن دے دی نا, اللہ آپ کو مجھے اور مکہ والوں کو آف کورس کہتے ہیں, ذرا سوچو اکیلے میں بیٹھ کے, جو بندہ تمہیں حق کی طرف بلاتا ہے, اپنی طرف نہیں, اس کو کوئی مفاد نہیں تم سے, اس کا کوئی لالچ نہیں ہے تم سے, اس کو تم سے نہ مال چاہیے, نہ رشتہ داری چاہیے, نہ دوستی چاہیے, نہ اس کو تمہارے بچوں کے رشتے چاہیے, نہ اس کو تم سے چائے پینی ہے, نہ کھانا کھانا ہے, صرف وہ تمہیں یہدی للحق. کس کی طرف اشارہ ہے یہاں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں افا من, من کے نیچے لکھ لیجئے, اس دور میں نبی. تو آج کون ہے ادھر؟ دائی دین, اللہ کے نبی کی طرح دین کی طرف بلانے والے لوگ جو دعوت دیتے ہیں, جن کی زندگی کا مشن ہی یہ کہ لوگوں کو حق کی طرف بلائیں. کہا اچھا سوچو, تم اپنے ذرا دماغ کو کھولو, نفع نقصان تو تمہیں بھی بہت اچھا آتا ہے اپنا, تم بھی تو آخر پڑھے لکھے ہو, تمہیں بھی اللہ نے ماشاء اللہ سمجھ دی ہے, تم جاب کرتے ہو, کاروبار چلاتے ہو, 2, 4, 10 بچے پالتے ہو, تمہیں بھی پتہ ہے دنیا دیکھی ہوئی ہے. بتاؤ کہ جو بندہ تمہیں حق کی طرف بلاتا ہے, کیا احق ان یتبع, وہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کی پیروی کی جائے, اس کو فالو کیا جائے, یا پھر ام اللہ یہدی الا یہدا. جس نے ہدایت لفظ کے مختلف اینگل دیکھنے وہ آیت لے لے. یا وہ شخص جو ہدایت نہ پا سکتا, یعنی کیا وہ شخص جو تمہیں حق کی طرف بلاتا ہے, کیا وہ اس کا زیادہ حق نہیں رکھتا کہ تم اس کے پیچھے چلو, اس کی بات مان لو, یا پھر وہ بندہ جو خود ہدایت نہیں پایا ہوا, کیا تم اس کی ہدایت کرنا چاہو گے, بلکہ اس کو تو خود ضرورت ہے کہ اس کی رہنمائی کی جائے. سمجھ گئے مفہوم کو؟ یعنی ہدایت کی طرف بلانے والوں کے پیچھے چلنا ہے, یا گمراہیوں کی طرف بلانے والوں, یا ہدایت سے دور کرنے والوں کی طرف. فما لکم کیف تحکمون, ये बड़ा प्यारा अंदाज होता है कुरान का, जब दिल से जवाब आते हैं ना सवालों के, तो उनके बाद अल्लाह ताला ज़्यादा बात नहीं करते, कहते हैं तुम खुद सोचो, फमाल लकुम, तुम्हें क्या हो गया, कई फताह कुमुन, तुम कैसे फैसले करते हो, किसके बारे में, अपने बारे में। ये किसको कहा जा रहा है, ये मुझे कहा जा रहा है कि जब तुम्हें खुद पता है कि हिदायत की तरफ बुलाने वाला तुम्हारा मुखलिस है, जो तुम्हें तुम्हारी कब्र, तुम्हारे हशर, तुम्हारी जन्नत की तरफ खैर के साथ देखना चाहता है, या वो चाहिए जो दुनिया के चार मज़े और चस्के और दस, तुम खुद बता दो कि तुम किसके पीछे चलोगे। अब इसका जवाब नहीं अल्लाह ने दिया, देखिए हर सवाल का पीछे जवाब आ रहा था ना, इसका जवाब नहीं है, ये तुम खुद सोचो। हदीस में आता है ना कि जब अल्लाह के नबी को कोई ऐसा सवाल पूछता कि जो बड़ा कॉमन होता जवाब, जिसको आप कहते हैं कॉमन सेंस है, तो यहाँ वही आप कहते हैं इस्तफ्तिर कल्बक, अपने दिल से पूछो, वला हुआ फतूक, चाहे लोग तुम्हें फतवे भी दें, तो अल्लाह कहते हैं कि सोल सर्चिंग क्वेश्चन है, जिसको उर्दू में हम बड़े डरते हुए कह दें अपनी अकल इस्तेमाल करो, यूज़ योर ब्रेन। कभी आप अपने बच्चों को नहीं कहते, बच्चे बोले मम्मी क्या करूं समझ नहीं आ रही, तो आप गुस्से में, आप उसको कहीं इस पोजीशन में भी नहीं होते कि उसको कहें कि क्या करो, आप कहते अपनी अकल इस्तेमाल करो, तो अल्लाह कह रहे अपनी अकल इस्तेमाल करो, अपना इंटेलेक्ट इस्तेमाल करो। देखिए मैं और आप इस वक्त यहाँ इस हॉल में बैठे हैं, अपनी अकल को यहाँ बैठ के पूछे, खुदा ना खास्ता ये मेरी ज़िंदगी का आखिरी महीना, आखिरी हफ्ता हो सकता है कि नहीं, आखिरी दिन हो सकता है, आखिरी लम्हा हो सकता है, कौन है जो मेरे काम आएगा आगे, मेरे घर, मेरे कपड़े, मेरे रिश्तेदार, मेरे भाई बहन, मेरी शॉपिंग, मेरी ज्वेलरी, सब पीछे, सिर्फ वो याद आएगा जो अलहक के रास्ते पे ले जा रहा है। जिसको ये बात समझ आ गई उसकी ज़िंदगी में कोई फिक्र नहीं। मेरे शौहर हैं तो उनकी फ़ोन पे ना आजकल उन्होंने बड़ा खूबसूरत एक स्क्रीन लगाई हुई है, मैं कई दफ़ा सोचती हूँ मुझे मिले तो मैं उसको भी उसका देखते हुए एकदम मतलब फीलिंग जो आती है ना, उसका खुलासा क्या है कि इस दुनिया की फिक्र ना करो, डोंट वरी अबाउट दिस वर्ल्ड, फिर नीचे लिखा है कि उस दुनिया की फिक्र करो। वल्लाही अगर मुझे उस दुनिया का फिक्र लग गया तो मेरे यहाँ के सब फिक्र हल्के ख़त्म। ये कुरान क्यों आपको बेखौफ कर देता है, क्योंकि अल्लाह का खौफ लग जाता है। ये कुरान क्यों आपको दुनिया की तमन्नाओं को कम करता हुआ दिखाता है, क्योंकि आखिरत की तमन्नाएं लग जाती हैं, यहाँ की दुनिया बोझ लगती है। कुरान गैर मखसूस तरीके से स्विच करता है चॉइस। आपको पता नहीं इस हॉल में आपने एक महीना ही सिर्फ रहना है, तो आप 10 चीज़ें तो अपनी खोलेंगे ही नहीं, चलो छोड़ो जहाँ जाएंगे फिर खोल लेंगे, ऐसे ही करेंगे ना, गुजारा ही कर लेते हैं आप लोग, और जब यहाँ पता के पाँव पसार लिए हैं तो हम और भी लाएंगे और इस्तेमाल भी नहीं करेंगे, और हमारा इंतकाल पर मलाल हो जाएगा, फिर लोग रोएंगे हमें देखकर, और माँ रोएगी आंसू बहा के कि मेरी बच्ची को पहनना भी नहीं नसीब हुआ और दुनिया से चली गई। तो ये कुरान इंसान के लिए अल्लाह का एक बहुत बड़ा तोहफा है। ये वजह, ये आयत आप देखें कि ज़रा गिनी अल हक और अल हुदा या हुदन का लफ्ज़ कितनी दफ़ा आया इस आयत में, जी बताइए जल्दी से, पीछे भी कहता सिर्फ इस आयत का भी अगर आप गिने ना, मैं यह दी 6 दफ़ा हिदायत का लफ्ज और 4 दफ़ा हक का लफ्ज आया। थोड़ा सा हिदायत को समझते हैं, हिदायत का लफ्ज जो है हा दाल या से, पीछे भी बताया था लेकिन आप भूल चुके होंगे, ज़ाहिर है कि इंसान है उसको रिमाइंडर चाहिए होता है, क्या रूट है आप सब बोलिए, हिदायत का रूट क्या है, और हा दाल या से क्या है, हदिया, गाइडेंस इज द गिफ्ट, हिदायत अल्लाह का एक तोहफा है। जिसको ये मिल जाए फिर वो क्यों ना जेरे लब मुस्कुराए, फिर उसको क्या परवाह दूसरों के तोहफों की, किसी को आप देखे डायमंड की रिंग मिल जाए तो उसको क्या चांदी की या जरकन की रिंग अच्छी लगेगी, वो कहेगा मुझे इतनी बड़ी गिफ्ट में चीज़ मिल गई मुझे इसकी क्या, तो हिदायत एक तोहफा है। असल इसका मानी क्या आज उसको समझ के जाइएगा, मैं बड़े दिन से इंतज़ार में थी इस आयत के, ये हदिया तोहफा हो गया, लेकिन असल में, और ये जो बात कह रही हूँ फिर कह रही हूँ कि ये बड़ी अहम बात है, अगर नींद आ रही है तो छोड़ दें, सीधे हो जाएं, टेक छोड़ दें, हिदायत का जो लफ्ज़ है ना हुदन, इसमें असल मानी क्या होता है, नकलो हरकत, टू मूव। अब आप नकलो हरकत को कहें ट्रांसपोर्टेशन, हिलाना जुलाना, एक तरफ से हटके दूसरी तरफ जाना, अरब लोग जब दुल्हन की डोली को उठाकर जैसे एक घर से लेके दूसरे घर में ले जाते थे ना, तो कहते थे हुदीतुल मरअतु, लड़की या औरत चली गई इला बैति ज़ौजिन, उसके शौहर के घर। ये सिर्फ आपको इसकी डिक्शनरी में उलझा रही हूँ कि औरत अपने असली घर की तरफ चली गई, ठीक है ना। तो गया कि शादी के बाद माँ बाप का घर अपना नहीं होता, अपना घर अपना होता है। तो हिदायत मिलेगी तो जिंदगी में मूविंग्स होंगी। वही बात है कि खूब जो था वो ना खूब लगेगा, जो अच्छा लगता था वह बुरा लगेगा। मेयार बदलते हैं, हिदायत बंदे के मेयार के बदलने का नाम है। आप कहते हैं 11 पारे पढ़ने का नाम हिदायत है, कोई नहीं है। आप 11 पारे पढ़ रहे हैं और आपके अंदर कोई मूवमेंट्स ही नहीं हो रही, वो क्या हिदायत है? टस से मसी नहीं हुए। हाँ फर्क, टाइम लगता है, आप इधर थे ना, अब थोड़ा इधर आ गए फिर उधर जाएंगे, एक वक्त आएगा कि आप बिल्कुल सीढ़ियों से दरवाजे पर पहुंच जाएंगे। हिदायत के सफ़र हैं, 10 सफ़र हैं, मैंने पिछले दौरे कुरान में लिखाए थे, अब भूले ना होंगे तो कोई बात नहीं, शायद इसी आयत पे लिखाए होंगे। हिदायत के 10 दर्जे हैं, चलो तो सही। अल्लाह क्या कहता है कि तुम एक दिन में सब करो, कोई भी नहीं कहता, पर चलो तो सही। तो आप कह सकते हैं कि हिदायत के एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह जाना, इस दुनिया को छोड़कर आखिरत पे जाना, प्रायोरिटीज़ का चेंज होना है। जो लीस्ट प्रायोरिटी थी ज़िंदगी में, द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी बनने लगती है। ये तो है एक मानी, दूसरा भी लिखिए। अब इतना क्लियर है, खुद से पूछ भी लें क्या हकीकत में मैं हिदायत पे आ रही हूँ। खोल के क्या कहेंगे, तो क्या मेरी ज़िंदगी में चेंजेस आ रहे हैं? कल कितने लोगों के हमने कमेंट सुने हैं ना, आप लोगों ने अगर नहीं सुना घर से उसकी रिकॉर्डिंग है, पूरा प्रोग्राम शुरू से सुने, खासतौर पे शुरू में स्टूडेंट्स की थी। कभी आंसू झूठे नहीं आते बंदे की ज़ुबान से, आंसू भी नहीं निकलते, लफ्ज भी नहीं निकलते। हर स्टूडेंट का एक ही जुमला था कि इस कोर्स ने मुझे बदल दिया। तो हिदायत बदलने का नाम है। इसी तरह दूसरा, अब ये चीज़ भी अब मैं आपको कहूँगी तो आप इंशाल्लाह इससे कुछ और सोचेंगे, सूरत मायदा की हिदायत का लफ्ज़ है ना, ये हदिया से भी है, हा दाल ज़ेर। और हदी किसको कहते हैं, कहाँ पड़ा ये लफ्ज़, किस कुर्बानी को, कहाँ पड़ा? सूरत मायदा की शुरू में, वला हद जी वला कलाइद। तो हिदायत कुर्बानियाँ मांगती है, इसमें कुर्बानी भी है। जो बंदा हिदायत पे आएगा उसको अपना बहुत कुछ कुर्बान करना पड़ता है, प्यारी जगह, प्यारे रिश्ते, फेवरेट ड्रेसेस, बहुत कुछ। जहाँ शरीयत क्या टूटती है ना, वो हर चीज़ कुर्बान करेंगे तो हिदायत मिलेगी। फिर आप देखेंगे किस तरह इंसान को फायदा होगा। आप कह सकते हैं कि हिदायत दो चीज़ों के बीच में से एक को छोड़कर दूसरी चीज़ की तरफ जाने का नाम है। अब ये बातें मैं कौन समझाएगा? तो हिदायत क्या है? अपनी सोच को बदलना और ख़ुद को तब्दील करना और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक ढालना, ये भी इसमें आता है। आप बदल तो गए लेकिन क्या बदले? पहले अपने हाथों बिके हुए थे, अब लोगों के हाथों बिकने लगे। ये तो बस यही हुआ कि आपने अपना खुदा बदल लिया। मक्का वाले करते थे कुछ महीने लात की पूजा करते, फिर बोर होने लगते तो कहते अब इस मंथ से हम मनात की पूजा करेंगे। तो एक बुरी रस्म, बुरी आदत को छोड़ के दूसरी पे चले गए तो क्या गए? हिदायत क्या है कि खुद को बदलना और अल्लाह की मर्जी पे ढलना, क्योंकि अल्हादी वो है। बात बात ये है हदीन सिरात अल मुस्तकीम, जो हमने बचपन से पढ़ी और सुनी और समझ कोई नहीं आती, अल्लाह के हुक्मों का ढलना। आप देखिए कि आज अगर किसी का दांत टेढ़ा हो जाता है ना, पैदाइशी होते हैं तो हम उनको सीधा करवाने की कोशिश करते हैं ना, आजकल वो ब्रेसिस भी लगते हैं। खुदा ना खास्ता किसी की हड्डी टेढ़ी हो पैदाइशी तौर पे, तो फिर हम उसको कुछ सांचों में डलवा देते हैं। हमारी हड्डी टेढ़ी हो तो हम सीधे होने चाहते हैं, हमारे दांत टेढ़े हो तो हम सीधे होना चाहते हैं, लेकिन हमारी सोच टेढ़ी हो हम सीधा नहीं होना चाहते, हमारा अकीदा टेढ़ा हम सीधा नहीं होना चाहते, हमारे ख़ानदान बिरादरियों के रास्ते फ़र्क थे हम उनके ऊपर चलना चलना ही नहीं चाहते। ये है इंसान का मसला। इसलिए इंसान को इस इंसान की निजात का, यानी इस आयत का जो आखिरी बात है ना, वो क्या है कि जब अल्लाह को सब कुछ जो मानते हो, हम मानते हैं ना जी, اللہ الرحمن الرحیم المالک القدوس السلام المومن المہیمن العزیز الجبار مانتے ہو نا, تو بس آج سے دل کی گہرائی سے اس کو الہادی مان لو, وہ گائیڈ کرنے لگا. جس نے رستہ بنایا وہی رستے پہ چلائے گا تو اس منزل ملے گی. سوسائٹی کے کہنے پہ اللہ کے رستوں پہ چلیں گے نا, تو یہ تو ایسے ہی ہے کہ مجھے آنا ہے عائشہ کے گھر میں اور راستہ میں پوچھوں ارم سے کہ ارم جو راستہ بتائے گی ادھر جاؤں گی, میں نہیں پہنچ سکوں گی. اور جب کہ ارم کو خود نہیں پتا کہ عائشہ کا گھر کدھر ہے, یہ کیا کہتی ہے؟ میرا خیال ہے. اسی لیے اگلی آیت میں اس کا ایک مختلف اینگل آنے لگا, اس کو بھی سمجھیے.